आशा, इससे पहले कि कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करें, आज जो वाकया हुआ कि कार बम के हमले में 8 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 14 अफराद हलाक हुए हैं और तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की है, और अभी हाल ही में ऐसा ही एक और वाकया हुआ था, तो क्या इसका कोई तस्करा हुआ? ये एजेंडे पे आई बात किसी जगह एक ऐसे वक्त में जब अमन मुज़ाकरात हो रहे हैं?
जी, जो तालिबान का जो इस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है वो तो पब्लिक नहीं है, सिवाय इसके कि वो ये कहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन कैसे लाया जाए। उस पे तमाम जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपनी राय का इजहार करेंगे, लेकिन ज़ल्मे खलीलजाद जो कि अमेरिका के चीफ नेगोशिएटर हैं, जो खुद तालिबान उनकी टीम तालिबान की टीम से बातचीत कर रही है, और वो बातचीत उन्होंने सिर्फ इस कॉन्फ्रेंस की वजह से 2 दिन के लिए रोकी है, उन्होंने खासतौर पर इस इशू पे ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि ये जाहिर करता है कि ना सिर्फ ये कि अफगानिस्तान में अमन कितना जरूरी है, बल्कि ये भी कि अफगानिस्तान में जल्द अज जल्द अमन का आना और जंग बंदी होना किस कदर अहम है। तो जाहिर है कि सीज फायर एक अहम मुतालबा है, और तमाम जो अफगान हैं उनका भी सबसे बड़ा मुतालबा यही है कि सबसे कि जल्द अज जल्द अफगानिस्तान में अमन आए और जंग बंदी हो।
अच्छा, तो इस मौजूदा 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में सबसे अहम बात यह है कि अब तक तालिबान इनकार करते रहे हुकूमत के साथ, अफगान हुकूमत के साथ किसी नौयत की कॉन्फ्रेंस में बैठने से, लेकिन इसमें अपनी पर्सनल कैपेसिटी में हुकूमत के नुमाइंदे शामिल हैं, तो कौन वो लोग हैं और इसका क्या असर पड़ेगा इस कॉन्फ्रेंस पर?
देखिए, जो चंद लोग जिनका हमें नाम जिनके बारे में हमें पता चला है, वो डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, फिर नादिर नादरी अफगानिस्तान के सियासतदान एक बड़ा नाम, मतीन बेग साहब, लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंस मैं इसको एम्फोसाइज करना चाहूंगी ये नहीं है कि कौन आया है हुकूमत की तरफ से, ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये पहली दफा है कि एक ऐसी इंट्रा अफगान डायलॉग हो रहा है जिसमें एक तो हुकूमत के नुमाइंदे अपनी जाती हैसियत में शरीक हुए हैं और तालिबान ने उनकी शिरकत पे इतराज नहीं किया, और दूसरी तरफ अफगान हुकूमत की भी हिमायत हासिल है इस कॉन्फ्रेंस को। इससे पहले जो इंट्रा अफगान डायलॉग हुआ था वो मॉस्को में हुआ था और उसको अफगान हुकूमत ने एक नाकामी और एक फेलियर करार दिया था, और उस डायलॉग में तालिबान ने साफ इनकार कर दिया था कि अफगान हुकूमत का कोई नुमाइंदा शिरकत नहीं करेगा। तो इसको एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू समझा जा रहा है। इस पे खासतौर पर अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने ट्वीट भी किया है ये बात के जाती हैसियत में ही सही अफगान हुकूमत के नुमाइंदे टेबल पर तो बैठे हैं, और हमने जो कॉन्फ्रेंस के अंदर कई लोगों से बात की, मसलन जमालुद्दीन बदर साहब हाई पीस काउंसिल के मेंबर हैं, कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर वो बाहर निकले तो उन्होंने बताया कि जो हुकूमत के नुमाइंदे हैं वो अपनी जाती हैसियत में भी वो तमाम नुकात उठा रहे हैं जो अफगान हुकूमत का कोई नुमाइंदा अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में उठाता, तो उनकी मौजूदगी एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है।
तो इसमें जो सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे शामिल हैं या अपनी कैपेसिटी में जो हुकूमत के लोग आए हैं जो कि नुमाइंदे नहीं हैं जैसे कि आपने कहा, तो इसमें कोई खातून भी शामिल है?
जी जी, कई खवातीन शामिल हैं, बल्कि उनमें से एक खातून असीला बर्दा एक बड़ी मारूफ अफगान यू नो वेमेंस राइट्स एक्टिविस्ट हैं, खवातीन के हकूक के लिए काम करती हैं, वो खुद भी अफगान हुकूमत की तरफ से OIC में इस वक्त इंसानी हकूक पर अफगान हुकूमत की नुमाइंदगी कर रही हैं। उन्होंने हमें बताया कि उन्हें तालिबान के रवैये में बहुत तब्दीली नजर आई। उन्होंने कहा कि कल रात को जो एक इशाइया दिया गया था उसमें और उसके बाद तालिबान जो खवातीन आई हैं और कई खवातीन आई हैं, मैं नंबर इसलिए नहीं बताना चाह रही कि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन हम जब अंदर गए थे तो कम से कम 4-5 खवातीन मुझे नजर आई थी। तो उन्होंने कहा कि तालिबान ने हमारे साथ बैठे, उन्होंने हमारे साथ गुफ्तगू की और ये लग रहा था कि जैसे वो ये जाहिर करना चाह रहे हैं कि वो खवातीन से बातचीत के लिए तैयार हैं। फिर ये कि हमने जितनी दफा खुद तालिबान से बात की है और उनके नुमाइंदों से, तो उनका ये कहना है कि हम खवातीन के हकूक और इंसानी हकूक पर यकीन रखते हैं। इस तरह जो दूसरे कॉन्फ्रेंस के लोग थे उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि तालिबान ने बहुत क्लियरली कहा है ये कि ये 90 की दहाई के तालिबान नहीं है, ये जो कम अज कम जो पोलिटिकल ऑफिस के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बैठे हैं ये लग रहा है कि उनके रवैये में इंसानी हकूक और खासतौर पर खवातीन के हकूक के हवाले से तब्दीली आई ہے اور وہ خواتین کی تعلیم، خواتین کے کام کرنے کے حق، خواتین کے تجارت اور خواتین کے وراثت کے حق، ان تمام حقوق پہ بات کرنے کو اور ان تمام حقوق کو قبول کرتے ہیں. انہوں نے کہا یہ ضرور ہمارا ڈس اگریمنٹ ہو سکتا ہے جب ہم مل کے بیٹھے ہیں کہ خواتین کا حق، کہ یہ کہ حقوق خواتین کو کس طرح دیے جائیں، اس کی جو انٹرپریٹیشن حق کی کیا ہوگی، کہ ایک اس کا مطلب کیا ہے، لیکن یہ کہ بنیادی طور پر اتنی تبدیلی ضرور آئی ہے کہ وہ کھلم کھلا یہ کہتے ہیں، اکنالج کرتے ہیں کہ وہ خواتین کے حقوق پر یقین رکھتے ہیں.
عائشہ، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ابھی سیشن ختم ہونے والا ہے اور آپ کو بہت سارے لوگوں سے بات چیت کرنی ہے سلسلے میں، آخری سوال میں آپ سے پوچھوں گی کہ یہ خواتین کی جب بات ہوتی ہے تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ 90s کے طالبان سے مختلف ہیں، تو جب خواتین کا جرگہ ہوا تھا تو ایک بڑی تشویش اس بارے میں تھی کہ امریکہ کا بھی موقف یہ تھا کہ جو خواتین کا معاملہ ہے اس پر جو آئندہ حکومت ہوگی وہ طے کرے گی حقوق کا معاملہ، تو اس پر آپ کی خواتین سے کچھ بات ہوئی؟
جی دیکھیں، ہم جتنی بھی یہاں خواتین ہیں ان سے بھی بات کر رہے ہیں، مگر جو یہاں پہ مرد حضرات بھی آئے ہیں ان سے بھی ہم بات کر رہے ہیں. دیکھیں، جو افغانستان کا اب آئین ہے، موجودہ آئین، وہ خواتین اور اقلیتوں اور تمام افغانوں کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے. تو اب یہاں جتنے بھی افغان آئے ہیں خواتین سمیت، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آئین کو جتنا ممکن ہو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ جن خواتین سے میں نے افغانستان میں بات کی، سول سوسائٹی کی ممبرز، جن میں آرٹسٹ کمیونٹی کی بھی خواتین شامل تھیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ باتیں کرنے میں بہت آسان ہوتی ہیں، لیکن اگر طالبان واقعی پاور میں آ گئے اور طاقت ان کے ہاتھ میں ہوئی، تو پھر جو دوحا میں پولیٹیکل آفس کے چند نمائندے بیٹھے ہیں وہ فیصلہ نہیں کریں گے، جو زمین پہ ان کے لڑنے والے ہیں، جو کہ کئی دہائیوں سے صرف لڑائی کر رہے ہیں اور ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں اکثر خواتین کی تعلیم اور کام کرنے اور اس کی شرح بہت کم ہے. انہوں نے کہا کہ ان کے نقطہ نظر میں اور جو آج کی اب پڑھی لکھی خواتین ہیں نقطہ نظر میں کافی فرق ہے، اور ان کو اس بات کی کافی تشویش تھی کہ بات چیت کرنا ایک بات ہے اور پاور میں آ کے جب آپ کے پاس طاقت ہو اس چیز پر عمل کرنا ایک دوسری بات ہے.
بہت شکریہ عائشہ آپ کا.